ஓம் நம சிவாய. டியர் லிசனர்ஸ் ஆஃப் shivam.org, த நெக்ஸ்ட் ப்ரோக்ராம் இஸ் ஸ்பிரிச்சுவல் டிஸ்கோர்ஸ். இன் திஸ் யூ ஆர் அபவுட் டு லிசன் சிவ மஹிமா பிரசன்ட் பாய் சுவாமி சந்தோஷி மாதாஜி. தேங்க்யூ. ஓம் நம சிவாய்.
கோஸ்வாமி ஜி லிக்கி மந்திர மகாமணி விஷய வியாலகி. மந்திர எக் ஐசி மணி ஹே ஜோ விஷயோ கே வியால் கோ தூர் கர்னே வாலி ஹே, விஷ கோ தூர் கர்னே வாலி ஹே. யூ தோ விதாதா கோ பி யே தாகத் நஹீ ஹே கி ஹமாரே மஸ்திஷ்க மே யதி விதினா நே குச் கடோர் லிக் தியா ஹே, குச் கடினதா லிக் தி ஹே, தோ ப்ரஹ்மா ஜி சாஹே, விதி சாஹே कि मैं अब इसको बदल दूं, तो विधाता भी हमारे प्रारब्ध के विधिना के विधि को जो हमारे मस्तक पर उसने लिख दिया है, अर्थात जीव ने जो अपने भाग्य में लिखा लिया है, उस भाग्य को मिटाने की बदलने की ताकत ब्रह्मा जी के पास भी नहीं है. स्वयं ब्रह्मा चाहे मैं इसमें कुछ हेर फेर कर दूं, नहीं कर सकते हैं, परंतु इस मंत्र में इतनी बड़ी ताकत है कि वो मंत्र महामणि विषय व्याल के मेटत कठिन कुअंक भाल के, भाल कहते हैं मस्तिष्क को, मस्तिष्क में यदि विधिना ने कुछ कठोर लिख दिया है तो उसे मिटाने की ताकत है किसको? बोले भगवान के नाम को, भगवान के मंत्र को. इसलिए इस मंत्र का जप करना चाहिए. इस जप के कारण, और ये जप कैसे करना चाहिए? बोले ऐसा नहीं कि ये जप कैसे जपें, भाव कुभाव अनख आलसु, नाम जपत मंगल दस दिशु. भाव से आप नाम लें, कुभाव से आप नाम लें, आलसी आलस में आप नाम लें, और स्वस्थ होकर आप नाम लें, कैसे भी नाम लें. भाव कुभाल अनख आलसु, नाम जपत मंगल दश दिशु. नाम, परंतु इस नाम का प्रभाव ऐसा है कि जैसे भी कोई भाव से कुभाव से कैसे भी भगवान का नाम लेगा तो निश्चय रूप से उसका फल तो उसे मीठा ही प्राप्त होगा. जैसे कि मिश्री की डली, मिश्री की डली को आप कैसे, मिश्री को कैसे भी खाएंगे, उसमें मिठास के अतिरिक्त आपकी जिह्वा को और कुछ मिल ही नहीं सकता. किसी भी कैसे भी आप बैठ के खाएं, चल के खाएं, लेट के खाएं, मिश्री आपके मुख में मिठास ही प्रकट करेगी. परंतु वही मिश्री कभी कभी, एक बात ये भी होती है, कभी कभी वही मिश्री किसी पित्त के रोगी को खाने के लिए दे दी जाए तो पित्त के रोगी को मिश्री मीठी नहीं लगती है, उसको बड़ी कड़वी लगती है. और कड़वी मीठी लगने से वो कहता है मिश्री ये क्या है, बड़ा कड़वा है. तो यदि कोई मिश्री को कड़वी बताए आपके सामने, आपका अपना अनुभव क्या कहता है? आप उसकी बात मान लेंगे? आप ये बात कभी मानने को तैयार नहीं है कि मिश्री कड़वी है. आप बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, समझते हैं, आपने उसका स्वाद लिया है, अनुभव किया है, तो आप यही कहेंगे मिश्री कड़वी नहीं होती, मिश्री कड़वी नहीं है. और वो कहे कि मुझे कड़वी लग रही है, तो आप कहेंगे भैया मिश्री तो कड़वी नहीं है, पर हो सकता है तेरी जवान में कुछ विकार हो, तेरे मुख में कोई बीमारी हो जिसके कारण तुझे कड़वी लग रही है, पित्त के कारण तुम्हें मिश्री कड़वी लग रही है. तो वैद्य लोग जानते हैं क्या ऐसे आदमी के लिए क्या उपचार करते हैं? जिसके अंदर पित्त रोग बहुत बढ़ जाता है, जब पित्त बढ़ता है शरीर में तो हमारे अंदर कड़वापन आने लगता है, मुंह में कड़वा कड़वाहट आने लगती है, और उस कड़वेपन में मिश्री भी कड़वे लगने लगती है. तब पित्त की दवाई में वैद्य लोग मिश्री का मिश्रण करते हैं, मिठास मिलाते हैं और धीरे धीरे पित्त की औषधि हमेशा मीठी होती है और धीरे 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 जैसे जैसे औषधि शरीर में पहुंचती है पित्त रोग कम होने लगता है और उस दवाई के खाने वाले को उसे मिश्री की मिठास उसकी जवान को मालूम पड़ने लगती है। उसी भांति हमारे अंदर भी कभी कभी पित्त का रोग इतना बड़ा हुआ है। ये पित्त कौन सा बड़ा हुआ है? संसार के विकारों का पित्त इतना बढ़ गया है जिसके कारण हमारे मन को ये मिश्री मीठी नहीं लगती है, अर्थात भगवान का नाम मीठा नहीं लगता है। बहुत से लोग कह देते हैं राम राम करते तो हैं पर हमें ऐसा कुछ लगता नहीं है, कृष्ण कृष्ण करते तो हैं पर कुछ ऐसा लगता नहीं है, कुछ फर्क नहीं पड़ता है। राम राम कहने से शिव शिव कहने से हमें ऐसा कुछ फर्क नहीं पड़ता है, कुछ लगता नहीं, उनके जिव्या में कुछ उसका रस नहीं आता, स्वाद नहीं आता, कुछ मिठास सी नहीं लगती है। बोले कारण, कारण ये है कि उनके अंदर भव रोग बड़ा हुआ है, संसार का रोग इतना बढ़ गया है, विषयों की वासनाएं इतनी प्रचुर मात्रा में उसके अंदर भर गई है कि उसे संसार के विषय ही अच्छे लगते हैं, संसार के भोग ही अच्छे लगते हैं, संसार की वार्ता ही अच्छी लगती है, संसार के ये कहना सुनना बोलना विचारना संसार के प्रति ही उसे अनुराग है, वही अच्छा लगता है और उसी में वो निरंतर रमण करता है। जैसे नारायण गुबरेला होता है ना, गुबरेला एक गोबर में पैदा होने वाला कीड़ा, गोबर का कीड़ा उसे कहते हैं गुबरेला। उस गोबर के कीड़े को गोबर के अंदर जो आनंद मिलता है उसे गोबर से निकाल करके किसी साफ सुथरी जगह में रख दो तो धीरे धीरे खिसक खिसक कर वो वही उसी गंदगी में जाकर अपने को प्रसन्न पाता है। उसी तरह से हमारा मन उस गुबरेले के समान हो गया है कि जो संसार में संसार रूपी गोबर के अंदर रहकर अपने को सुखी पाता है क्योंकि बहुकाल बहुत समय से इसे अभ्यास हो गया है, संसार के सहारे जीने का इस मन को आदत पड़ गई है। याद रखना, मन हमेशा जीवित रहने के लिए, मन हमेशा चलने के लिए उसे किसी वैसाखी की आवश्यकता पड़ती है। बिना किसी सहारे से किसी का मन नहीं चल सकता है। एक बात याद रहे, मन कहते हैं ना, मन तो कभी आपने गंभीरता से अपने मन के लिए सोचा कि ये मन आखिर कैसा है, ये मन का रूप क्या है, ये मन क्या चीज है? यदि आपने विचार किया होगा तो मुझे ऐसा लगता है कि निश्चित रूप से आपने अपने आप में मन का रूप खोजने के लिए जब आप चले होंगे तो आपको मन किसी न किसी, मन का वास्तविक अपना कोई रूप न होते हुए भी मन अपने रूप को बना लेता है। इसलिए ये मन बहुरूपिया है, बहुरूपिया। बिना किसी मन जब कभी भी मिला तो किसी न किसी रूप में मिला, किसी न किसी आकार में मिला और किसी न किसी सहारे से मिला। ये मन वास्तव में जिस मन जिसके सहारे चल रहा है, संसार के सहारे चल रहा है, तो संसार का आकार इस मन ने ग्रहण किया हुआ है और संसार का आकार संसार को क्यों पकड़ा हुआ है? बोले संसार को सत समझा है इसलिए संसार के सहारे इस मन को जीने की आदत पड़ चुकी है बहुत समय से, अभ्यास। इस अभ्यास के कारण उसे संसार के सहारे चलना बड़ा सरल सुगम लगता है। पर कहो कि इस मन को संसार से हटाकर राम के सहारे चलाओ, भगवान के सहारे चलाओ, अभ्यास नहीं है ना, तो बड़ी घबराहट होती है। बात केवल अभ्यास की है। अभ्यास की बात ये है कि एक आदमी बिल्कुल नया नया ड्राइविंग करना सीखा है और एक बहुत समय से सीख गया है, वो निष्णात है, और जो हमेशा अच्छा ड्राइवर है, जिसने गाड़ी चलानी बहुत बढ़िया सीख ली, उसे गाड़ी चलाते हुए कोई टेंशन नहीं होती, बल्कि वो गाड़ी चलाते हुए एक आनंद का अनुभव करता है और उस आनंद के साथ हंसता बोलता खाता बात करता हुआ बड़ी प्रसन्नता के साथ गाड़ी चला रहा होता। और जो बिल्कुल नया है, जिसे अभ्यास नहीं है, उसे घबराहट है, पसीने आते हैं, हाथ पांव ठंडे होते हैं, उसे लगता है, डर लगता है कहीं गाड़ी लग न जाए। तो ये क्या है? अभ्यास है। तो कहने का अभिप्राय मेरा ये है कि हमें भगवान के सहारे चलने के लिए कहा जाए तो पहली बात तो ये है कि हमारे अंदर यही निश्चय नहीं है कि भगवान है या नहीं। जब हम सुनते हैं तब हमें लगने लगता हाँ भगवान है, और कभी कभी ऐसा लगता है कि क्या है भी कि जब कोई विपत्ति आती है और हम कुछ चाहते हैं, हमारे मन के अनुकूल हमें नहीं मिलता है, तो हमें शंकाएं होने लगते हैं। अरे हमने भगवान को इतना याद किया था और हमें ये चीज नहीं मिली, इसका मतलब भगवान है भी कि नहीं भी है। फल मिल जाए, इच्छा पूरी हो जाए तो हम सोचते हैं हाँ ये बात भगवान ने हमारी सुन ली, भगवान है। और नहीं मिला, कुछ चाहते थे नहीं मिला, तो प्रश्न शंका होने लगती है भी कि नहीं है। तो कहने का अर्थ था मेरा कि जो इस प्रकार में है नहीं है नहीं है नहीं, इनमें उलझे हुए हैं, द्वंद है, दृढ़ता नहीं है, स्पष्टता नहीं है, और स्पष्ट बुद्धि है, निश्चय दृढ़ नहीं है, और ऐसे में हम कहें कि हमारा मन भगवान में, माता जी आप बात तो बहुत अच्छी कहते हैं परंतु भरोसा विश्वास निश्चय जो होना चाहिए नारायण वो नहीं हो पाता है, डगमगा जाता है। तो परिणाम तो ये है कि हमारे मन में हमें दृढ़ करना होगा, निश्चय करना होगा, मन को सहारा देना होगा, मन को राम के सहारे शिव के सहारे से चलाने की आदत पड़ेगी, तो तब शिव शिव नाम रटते हुए शिवमय नाम हो जाए, मन हो जाए, कृष्ण कृष्ण कहते हुए कृष्णमय मन हो जाए, राम राम कहते कहते राममय मन हो जाए, हमारा मन का आकार भगवदाकार हो जाए, भगवतमय हो जाए। इसलिए हमें इतना अभ्यास करना चाहिए, और अभ्यास कब बढ़ेगा? धीरे धीरे ज्यों ज्यों ये मन भगवान की ओर नाम की ओर बढ़ता जाएगा, त्यों त्यों इस मन को रस की अनुभूति होने लगेगी, रस के आनंद की प्राप्ति होने लगेगी, और इसीलिए भगवान के नाम का सतत सतत जप करना चाहिए। और इस नाम के प्रभाव से क्या नहीं हो सकता, क्या ऐसी क्या नाम के प्रभाव से क्या नहीं हो सकता? गोस्वामी जी कहते हैं कठित क्वंक भाल के विधिना का लिखा हुआ मस्तक का कठोर भी बदल जाता है। भगवान शिव दृढ़ तपस्या में है, शंकर ने कामदेव को भस्म कर दिया, अर्थात इतने वैराग्यवान हैं, उन्हें जगत की कोई चिंता नहीं, परंतु माँ गौरी ऐसे वैराग्य मन में अपने प्रति अनुराग, शिव के हृदय में अनुराग प्रकट करना चाहती है, और माँ ने नमः शिवाय इस मंत्र का जप किया, भगवान के चरणों में वंदन किया, और ऐसे भगवान शिव जो ज्योतिष के सूर्याय अर्थात सूर्य ज्योतिष की गणना में सूर्य से ये गणना आरंभ होती है। ज्योतिष शास्त्र है, ज्योतिष ब्रह्म का नेत्र है। ऐसा नहीं है कि ये ज्योतिष भी एक शास्त्र है। धनुर्वेद, आयुर्वेद, ज्योतिष, ये स्कल्प, ये सब वेद के अंग माने गए हैं। ज्योतिष शास्त्र तो है, परंतु उसकी गणना आरंभ होती है सूर्य के साथ। सूर्य के साथ जो 27 नक्षत्र हैं और उन नक्षत्रों में जो तारा मंडल है उसके साथ ये गणना आरंभ होती है। और ये सूर्य स्वयं किसके आश्रित है, जिससे सारा सूर्य चलता है, ये सूर्य के रूप में स्वयं भगवान शिव के संग कृपा से, भगवान शिव इनके अधिष्ठान देव हैं, अर्थात अधिष्ठात्र देव हैं। भगवान शिव से सूर्य और सूर्य से, मैंने कल आपको कहा था, सूर्य चंद्र बंदी नयन, इसलिए भगवान शिव को शिव के समान ज्योतिषाचार्य और कोई है नहीं। ज्योतिष विद्या में, वेदांत विद्या में, महिमा में शिव से बढ़कर के और दूसरा कोई देव नहीं नारा। इसलिए भगवान सूर्य जिनके लिए नित्य वंदना करने वाले हैं, ऐसे भगवान शिव जो स्वरूप है, दक्ष के यज्ञ को विध्वंस करने वाले, अर्थात दक्ष यज्ञ क्या, दक्ष के अभिमान को, कर्मा अभिमानी देव है दक्ष, अर्थात जो लोग दक्ष के अंदर अभिमान हो गया था, ये कथा सुनी है कि जिस अभिमान के कारण शिव को नीचा दिखाने के लिए दक्ष ने सोचा कि मैं उन्हें अपने यज्ञ में आमंत्रण नहीं दूंगा, भगवान शिव को नहीं, शंकर को नहीं बुलाऊंगा। दक्ष के मन के अंदर ये अज्ञान था। ऐसी पौराणिक कथा आती है कि एक बार प्रजापतियों की सभा लगी हुई थी। दक्ष बनाता है, दिए बनाता है, बर्तन बनाता है, मूर्तियां बनाता है, ये सब आकार बनाता है, वो भी प्रजापति है। और इन सब प्रजापतियों के अध्यक्ष कौन है, बोले सकल सृष्टि के, अखंड अखंड ब्रह्मांड के जो अधीश्वर है, समस्त प्रजा के जो पति है, बोले वो कौन है, भगवान शिव है। भगवान ने ये सृष्टि बनाई, ये मूर्तियां बनाई। इस पर मुझे एक सुंदर सा प्रसंग स्मरण हो रहा है कि एक भक्त भगवान से वार्तालाप कर रहा था। भक्त और भगवान का संवाद चल रहा है और मधुर संवाद में कभी कभी भक्त ऐसे भी होते हैं जो भगवान के साथ झगड़ा भी करते हैं। जहां अतिशय प्रेम होता है ना, वहां झगड़ा भी होता है। भक्त अपने भगवान से कह रहा, भगवान आप क्या समझ रहे हैं कि मैं ही बड़ा हूं? नहीं, आपके बड़े वाली कोई बात नहीं है, बड़ा तो मैं हूं आपसे। आप बड़े नहीं हैं, आपसे बड़ा मैं हूं। भगवान कहते हैं, अच्छा तू मेरे से बड़ा है? हाँ मैं आपसे बड़ा हूं। भगवान ने कहा, मुझे इस बात में तू मेरे से बड़ा बन, मुझे इस बात में कोई आपत्ति नहीं है, परंतु तू अपने आप को जो मुझसे बड़ा बता रहा है, बन रहा है, तो आखिर बड़ा बनने का कारण क्या है, बात क्या है, ये मुझे समझा दे। भक्त ने कहा, प्रभु बात यह है कि आपका और मेरा काम एक है। आप भी मूर्तियां बनाते हैं, आपसे बढ़कर के शिल्पकार और कौन? ऐसी मूर्ति, ऐसी मूर्ति कब से ये सृष्टि चली आ रही है, और जब से ये सृष्टि चली आ रही है, सृष्टि में असंख्य असंख्य प्राणी, और उन असंख्य असंख्य प्राणियों में एक मनुष्य है, असंख्य 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 जिसकी कोई गिनती नहीं है, इतने मनुष्य भगवान ने पैदा कर दिए, पर आज तक कभी किसी की सकल से सकल, अकल से अकल किसी की मिलती नहीं। भले ही कहते हैं ये हम सकल है, पर कहीं न कहीं भगवान का सांचा सबके लिए अलग 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 है। एक सांचे में भगवान ने किसी को नहीं डाला, अर्थात सबकी अलग एक ऐसी विलक्षण, इतना बड़ा शिल्पकार भला और कौन हो सकता है। आपने भी मूर्तियां बनाई, मैं भी मूर्ति बनाता हूं। भगवान ने कहा इसमें और बड़ी बड़ी बात क्या है फिर, तू भी मूर्ति बनाता है, मैं भी मूर्ति बनाता हूं, तू कहता है तो ठीक है, पर इसमें बड़े होने वाली बात क्या है। का बड़े होने वाली बात यह है कि आपने ये जगत में मनुष्य आपने मूर्ति बनाई, इसीलिए हम कहते हैं कितनी मूर्ति हो, अर्थात मनुष्य भगवान की बनाई हुई मूर्ति है। कहा महाराज मैंने भी मूर्ति बनाई है। तब भगवान ने पूछा इसमें बड़े होने वाली क्या बात। बड़े होने की बात तो है ये आपकी बनाई हुई जितनी मूर्तियां हैं ना, ये सारी की सारी मेरी बनाई हुई मूर्ति की पूजा करते हैं, मेरी बनाई हुई मूर्ति की पूजा करते हैं। ये जो मंदिरों में कहीं पर भी हम मूर्ति रखी हुई है तो ये किसकी बनाई हुई मूर्तियां हैं, चाहे वो पट मूर्ति हो चाहे स्थिर मूर्ति हो, जो भी मूर्ति है वो मूर्ति को बनाने वाला कोई मूर्तिकार है ना। तो कहा कि इस मूर्तिकार ने मूर्ति बनाई और सबने उस मूर्ति की पूजा की, उसको हाथ जोड़ा, उसको सराहाया, उसे आंखों में रखा, उसकी प्रसन्नता की, प्रशंसा की, वाह क्या बढ़िया बनाया, क्या बढ़िया बनाया। ये सारी प्रशंसा करने वाला, सराहने वाला, वाई वाई करने वाला, तारीफ करने वाला, उस मूर्ति को चित्त में रखकर उसकी पूजा करने वाला कौन है। ये भगवान की मूर्तियां नहीं है तो और कौन है। कहा प्रभु इसलिए मैं आपसे बड़ा हूँ। भगवान कहते हैं कोई बात नहीं, तू बड़ा बन जा। तो कहने का अर्थ था मेरा, ये तो एक भक्त और भगवान का संवाद है कि भक्त भगवान से ये बात कहता है कि प्रभु मैं आपसे बड़ा हूं। भगवान कहते हैं कोई बात नहीं। तो यहाँ बात चर्चा चल रही थी कि दक्ष है प्रजापति, उन्होंने प्रजा का पालन करना है, उन्होंने सोचा कि मेरे कर्म में मैं सबसे बड़ा हूँ, प्रजापति हैं, प्रजा के प्रजापतियों के अध्यक्ष हैं दक्ष प्रजापति। दक्ष ने सोचा था कि मैं ही बड़ा हूँ। भगवान शिव कि सभा में बैठे हुए थे, सब उठकर खड़े हो गए, वो उठे नहीं। दक्ष के मन में ये रंज हो गया। बहुत लंबी कथा है इसके पीछे कि सरापा श्रापी हुई, भागवत में देवी भागवत में सब में विस्तार से ये कथा आती है, पर कथा के विस्तार में मैं नहीं जाऊंगी। बात केवल इतना मैं आपको कहना चाहती थी, दक्ष ने सोचा कि मैं शिव के बिना यज्ञ करूंगा और उस यज्ञ में शंकर को निमंत्रण न देकर न बुला करके मैं उन्हें ये एहसास करा दूंगा कि तुम्हारे बिना भी मैं यज्ञ कर सकता हूं, अर्थात शिव से रहित होकर वेव के भी सृष्टि का कार्य चल सकता है। परंतु उसका परिणाम क्या हुआ, वो यज्ञ असफल हो गया, वो यज्ञ विध्वंस हो गया, वो यज्ञ नाश का सृष्टि के लिए नाशकारी होने लगा, वो यज्ञ सृष्टि के लिए अमंगलकारी होने लगा। तो समस्त देवता लोग जाकर भगवान शिव की शरण में गए और भगवान से प्रार्थना की, प्रभु दक्ष की अज्ञानता के कारण सारी सृष्टि में अमंगल होने जा रहा है, सृष्टि का अनहित होने जा रहा है, हे कृपा निधान, हे आशुतोष, आप प्रसन्न होइए, कृपा कीजिए, बचा लीजिए प्रभु इस सृष्टि के विनाश से, सृष्टि के अमंगल से, सृष्टि के अशुभ से, आप बचा लीजिए, बचा लीजिए। भगवान शिव ने कृपा की और शिव से ही शुभ उत्पन्न हुआ, शिव से ही सृष्टि का मंगल हुआ, शुभ शिव से ही सृष्टि का कल्याण हुआ। वो देव अर्थात जो सकल जगत के अर्थात अनंत अनंत ब्रह्मांड के जो मंगल है, कल्याण है, शुभ है, वही सनातन है, वही शिव है, वही हम सबों की आत्मा है। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को विराम देती हूँ। ऐसे भगवान शिव हम सब लोगों के लिए परम मंगलदायी कल्याणदायी हो, उनका नाम स्मरण करें। बोल मन मेरे ओम नमः शिवाय, बोल मन जप मन मेरे ओम नमः शिवाय, जप मन ओम नमः शिवाय। बोलो शंकर भगवान की जय।